समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। रेणु, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम रेणु कटारिया एंड विद मी इज माई को एंकर अतहर सईद। And for you, dear listeners, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. So let's begin with the news headlines, Azhar.
Bilkul.
Several cabinet ministers, including Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Agricultural Minister Shivraj Singh Chauhan, and Information and Broadcasting Minister Ashnavi Vaishnaw, assume charge.
Dr. Jayashankar ne kaha, Bharat Pratham aur Vasudhaiva Kutumbakam, भारतीय विदेश नीति के दो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
एंड चंद्रबाबू नायडू, यूनानिमसली इलेक्टेड लीडर ऑफ एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ आंध्र प्रदेश।
सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। नीट यूजी 2024 परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा।
एंड इन फुटबॉल, इंडियन मेंस टीम टू टेक ऑन कतर इन अ क्रूशियल क्वालिफायर मैच फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 इन दोहा टुडे। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level.
Railgaadi, 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 chuk 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 chuk. Beech wale station bole ruk 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 ruk. Lohe ki salak, lohe ki salak, yahan se wahan, wahan se yahan se wahan, wahan se.
अतर, क्या आप बता सकते हैं कि हमने ये गाना किस लिए सुनवाया है अपने लिसनर्स को?
इस गाने से मुझे कहीं ना कहीं अपना बचपन याद आ गया, जब हमारे पापा की बात करें, चाचा की बात करें, मामा की बात करें, नाना की बात करें, नानी की बात करें,
और उन की बात करें, मौसा की बात करें
और खासतौर पर गर्मियों की बात करें।
जी बिल्कुल,
तो वो खेल याद आ जाते हैं जब हम खेला करते थे, पारंपरिक खेल हुआ करते थे। आजकल की अगर बात करें तो बच्चों को क्रिकेट याद है, शतरंज याद है, टेनिस याद है, बास्केटबॉल याद है, वॉलीबॉल याद है, या फिर हॉकी याद है, स्क्वैश याद है, सबसे ज्यादा तो क्रिकेट याद है।
जी बिल्कुल,
लेकिन वो जमाना हुआ करता था अब इन खेलों के अलावा, यानी ये खेल भी खेला
ये
करते
तो
थे,
खेला ही करते थे,
लेकिन इनके अलावा बहुत सारे ऐसे खेल होते थे, चोर सिपाही होता था, एक छुपम छुपैया होता था, बहुत सारे
पिट्ठू होते थे, कबड्डी हमने सबने स्कूल में,
खो खो खेली है हमने, है ना, तो इस तरह के खेल होते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें
Yes.
तो आज बच्चे कहीं ना कहीं इन खेलों को भूल गए हैं, रेणु,
मिस कर रहे हैं,
है ना?
यस, एंड द रीजन इज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले टुडे। द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। इट फॉलोज अ कैंपेन दैट कॉल्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट प्ले इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एवरीवेयर। Global research surveying over 25,000 children across 36 countries reveal that as many as 73% of children don't believe adults take play and how it can help them learn. With only 30% of adults are aware that play is a fundamental birthright adopted by the United Nations in 1989 and said there is an urgent need to put play back on the agenda. To drive this ambition forward, a dedicated network of global organizations, play experts, and most importantly, children and youth themselves had called on UN member states to support the resolution for an International Day of Play. And on 25th of March this year, the UN General Assembly ratified the International Day of Play with support from over 140 countries.
दरअसल इस दिन को मनाने के पीछे एक लॉजिक है, कहीं ना कहीं बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में इन्वॉल्व करना है ताकि वो जो मानसिक रूप से आजकल हम देखते हैं ना, मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने सिस्टम में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उदास रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कान खिलाने का इरादा है। शारीरिक रूप से जब हम
एक्टिविटी जब तक नहीं होगी,
बिल्कुल, जब हम एक्टिव होते हैं तो मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तो बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा सीखते हैं नीरू
जी, बिल्कुल।
और खेल विकास के सभी क्षेत्रों, यानी हम बौद्धिक की बात करें, सामाजिक की बात करें, भावनात्मक की बात करें, तो हर तरह से हमारा विकास करता है। शारीरिक में भी सीखने के शक्तिशाली अवसर पैदा करता है खेल, और खेल के माध्यम से बच्चे दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, नेतृत्व कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करना, अपनेपन की भावना को विकसित करना, रिश्तों और सामाजिक चुनौतियों से निपटना, ये तमाम तरह चीजें रेणु वो सीखते हैं, और साथ ही अपने डर पर विजय पाना सीखते हैं, है कि नहीं
जी।
और एक सबसे बढ़कर बात यह है कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दरअसल बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए खेलते हैं। अगर हम गौर से देखें और उसके पीछे का मनोविज्ञान समझने की कोशिश करें तो आमतौर पर खेल बच्चों को कल्पना और रचनात्मकता को, यानी क्रिएटिविटी को विकसित करने और उसको व्यक्त करने के लिए एक मंच सा प्रदान करता है, है ना रेणु
जी? बिल्कुल बिल्कुल। एंड हियर ऑल्सो नॉट फेलिंग टू मेंशन दैट प्लेफुल इंटरेक्शंस कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग एंड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ऑफ पेरेंट्स, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू द पेरेंट्स, द केयर गिवर एंड द चिल्ड्रन। वेन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टर्न अ चाइल्ड्स वर्ल्ड अपसाइड डाउन, जैसे कि आज की दुनिया में देख रहे हैं कि जहां इतने वॉर्स हो रहे हैं, इट इज इन प्ले दैट चिल्ड्रन कैन बोथ फाइंड सेफ्टी एंड रिस्पाइट फ्रॉम एडवर्स एक्सपीरियंस वाइल ऑल्सो बींग एबल टू एक्सप्लोर एंड process their experiences with the world. When children are driven away from their homes by war, conflict and displacement, access to nurturing relationships with parents, caregivers and peers are critical buffers from the effects of violence, distress and other adverse experiences. Yahan pe play jo hai, play comforts and soothes these children.
आपने देखा होगा कि एक फेज गुजरा है, बहुत तकलीफदेह और बहुत दुखदायी और बहुत कष्टकारी एक फेज गुजरा है कोविड का
जी।
कोविड में हमने इस बात को एक्सपीरियंस किया कि बच्चे एक लंबे समय के बाद अपने घरों में कैद हो गए, तो उनकी जो क्रिएटिविटी थी, उनकी जो रचनात्मकता थी, उनका शारीरिक विकास था, उनका मानसिक विकास था, उनका बौद्धिक विकास था, सब वहीं का वहीं। आपने देखा होगा उसके बाद जब कोविड से हम बाहर आए तो बच्चों के अंदर एक झिझक देखी। मैंने तो ये तक महसूस किया कि बच्चे सड़क पर चलने तक से कतराने लग गए थे।
yes.
वो सड़क पर चलना तक भूल गए,
कम हो गए थे, तो उस वजह से बिल्कुल।
तो बच्चों को खेलना बहुत जरूरी है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ वो जब खेलते हैं तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक रिश्ता जोड़ते हैं।
और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज हमने, एक और चीज देखने को हमें मिली कि जब कोविड के टाइम पे पेरेंट्स और बच्चों की एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बोर्ड गेम्स काफी खरीदे गए, पेरेंट्स और बच्चे शाम को बैठकर अपना बोर्ड गेम्स खेलते हैं, और एक एक उसमें एक बच्चों को पता चला कि अच्छा ये बोर्ड गेम्स भी होते हैं, वरना मोबाइल के अलावा आई डोंट थिंक दे न्यू ऑफ एनी अदर थिंग एक्सेप्ट मोबाइल।
हमने तो एक काम ये किया था रेणु, कि उस समय बच्चों के साथ हम बच्चे बन गए, उनके साथ जो फिजिकल जितना भी इन्वॉल्वमेंट होता था खेल कूद का, वो हम उसको चालू रखते थे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी और आपके ऊपर भी साइकोलॉजिकल असर पड़ता था कि आप भी उस चीज से बाहर आते थे जो डर और जो खौफ आपके अंदर था। तो बच्चों के ऊपर हम लौट करके आते हैं, तो बच्चे खासतौर पर जब खेल की अगर हम बात करें तो स्कूल में अब लिमिटेड स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं, एक या दो घंटे, उसमें खेलने के बाद फिर ये होता है कि बच्चे जब समर वेकेशन शुरू होते हैं तो समर वेकेशन में वो नानी नाना के घर जाने का बड़ा बेसब्री से
इंतजार करते हैं।
और किया करते थे, आज तो खैर हिल स्टेशन की बात जाने की बात करते हैं, हमारे टाइम में नाना नानी घर खास डेस्टिनेशन हुआ करते, तो वहां पर जो खेल होते थे, खासतौर पर जो पारंपरिक खेल होते थे, वो बच्चों को बहुत बौद्धिक विकास करते थे
जी। और हम सबने वो किया हुआ है, वो टाइम हमें याद है, इसलिए बहुत आसान है हम लोगों के लिए वो उसके बारे में बात करना।
देखिए दिन तो खेल कूद से शुरू होता था, शाम को फिर वो लोरी पर जाकर खत्म होता था नानी की,
बिल्कुल,
तो ये कहानियां और लोरी का सिलसिला भी खत्म हुआ है ना,
बिल्कुल। एंड हियर द इंटरनेशनल डे क्रिएट्स अ यूनिफाइंग मोमेंट एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स टू एलिवेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, सिग्नल्स अ कॉल फॉर पॉलिसीज, ट्रेनिंग एंड फंडिंग to get play integrated into education and community settings worldwide. So, अतर हम यहाँ पे क्योंकि education की और settings की और community की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों ना हम अपने listeners को एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाते हैं जो कि education से related है और एक classroom setting में गाया गया है.
तो नेकी और पूछ पूछ.
बिल्कुल.
मजा आ रहा है ना रेणु जी आपको. बचपन याद आ रहा है.
बचपन याद आ
क्या मजे के दिन हुआ करते हैं बचपन की. और बचपन को जो गाने के पीछे भावना है इस भावना से अगर गुजारा जाए. आज हम देखते हैं बच्चे उदासी का शिकार हो जाते हैं. एक कोने में बैठे रहते हैं. एकांत पसंद करने लगते हैं और उनमें ओबेसिटी बढ़ने लगती है. ओबेसिटी बढ़ती है तो कई सारे दूसरे रोग पैदा होते हैं. तो हम यानी पेरेंट्स को ये चाहिए, बड़ों को ये चाहिए, अभिभावकों को ये चाहिए कि बच्चों को प्रेरित करें कि वो शारीरिक रूप से विश्राम करें, खेलें, एक स्पेसिफिक समय खेल के लिए जरूर निकालें. ये आज के दिन का उद्देश्य है.
बिल्कुल बिल्कुल. फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट.
मास्टर जी की आगे चिट्ठी चिट्ठी में से निकला मच्छर. चिट्ठी में से निकला मच्छर. मच्छर की दो लंबी मूछे पूंछ पे बांधे दो दो पत्थर. मच्छर की दो लंबी मूछे पूंछ पे बांधे दो दो पत्थर.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है. तो सबसे पहले हम चलेंगे भोपाल. रेणु
जी,
भारतीय संस्कृति माना गया है कि पृथ्वी, पर्वत, नदी, पेड़ पौधों में जीवंतता है, यानी जीवन है उनके अंदर और वे हमारे लिए पूजनीय हैं. जिस प्रकार मानव देह में धमनियों के माध्यम से रक्त का संचार होता है, उसी प्रकार नदियां पृथ्वी पर जीवन का संचार करती हैं. लिहाजा हम सबके लिए नदियों का अक्षुण्ण निरंतर प्रवाह बहुत जरूरी है और उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, उनकी सफाई भी जरूरी है. रेणु, नदी और जल स्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया. बहुत ही शुभ ये अभियान हो सकता है. इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा.
मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए 5 जून से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान 16 जून तक चलेगा. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस पर रायसेन जिले में झिरी बहेड़ा स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर गंगा जल संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल की पूजा अर्चना कर बरगद का पौधा रोपा. मुख्यमंत्री के साथ जनजातीय लोगों ने 108 पौधों का रोपण भी किया. जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जन समुदाय द्वारा वृक्षारोपण, जल स्रोतों की साफ सफाई के लिए श्रमदान, जल सम्मेलन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. अभियान में 5 जून से अब तक लगभग 36,000 नागरिकों के जन सहयोग से नदियों, तालाबों के घाट, कुओं, बावड़ियों की साफ सफाई और बावड़ियों के पानी का सैंपल लेकर लैबोरेटरी में परीक्षण किया गया है. जल संरचनाओं के किनारे लगभग 11,000 पेड़ लगाए गए हैं और जल संरचनाओं में 33,00,000 घन मीटर का क्षमता वर्धन किया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के दौरान 3,090 करोड़ रुपए की लागत से जल संरक्षण के 990 कार्य प्रदेश में प्रारंभ किए गए हैं. प्रत्येक जिले, विकासखंड और पंचायत स्तर पर जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए जन भागीदारी से गतिविधियां संचालित की जा रही है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे अभियान प्रारंभ किया है. इसी प्रकार उनकी पहल पर कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 45,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को तथा 45,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराए गए हैं. नदी जोड़ो अभियान की इस महती पहल से बुंदेलखंड का संपूर्ण क्षेत्र सिंचित होगा और यहां के लोगों की पेयजल संबंधी समस्या का भी समाधान होगा. इसी प्रकार राजस्थान के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी जोड़ो अभियान के लिए मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ और राजस्थान में 35,000 करोड़ रुपए से गतिविधियां संचालित की जाएंगी. प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस पहल के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
ये तो था समाचार भोपाल से, और उसके बाद हम रुख करेंगे ओडिशा का। कटक से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं रेणु
जी, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन फेस्टिवल्स हू स्पीक ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बैकग्राउंड। द कलरफुल फेस्टिवल्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी इंडियन। द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया अट्रैक्ट्स द वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, दुर्गा पूजा एंड मेनी मोर। एवरी रीजन सेलिब्रेट्स देयर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू देयर रीजनल customs and rituals. And when we speak of Odisha, it has wide rich customs and rituals. These days, many parts of Western Odisha are celebrating Sheetla Shashti festival with much enthusiasm and cultural flavor. More from our correspondent Tapan Maharana.
Sheetla Shashti Yatra marks the divine marriage of Lord Shiva and Goddess Parvati. Though all humans are the creation of God, only few are fortunate enough to get the opportunity to become the parents of the divine spirits to hold the divine wedding. When human couple becomes the divine father and mother to perform the divine marriage, God becomes family members of human being. All the rituals that are part of normal marriage ceremony in Odisha are followed for the divine wedding. Every year, Sheetla Shashti Jatra is celebrated towards the end of the summer season. The aim of the festival is to call the rain gods to give reprieve from the scorching heat of the sun. The festival begins with the ceremonial marriage of the divine couple Shiva and Parvati. The idols of the deities are beautifully decorated and placed on chariots, which are then pulled by the devotees in a grand procession. During the procession, the streets come alive with vibrant music, dance performance and cultural programs. Traditional folk dance like Sambalpuri and Gotipuo, Bihu, Manipuri and other classical dances of India are performed by skilled artists, showcasing the rich cultural heritage of the region. The procession also features various tableaux depicting mythological stories and episodes from the life of Lord Shiva. During the carnival period, Sambalpur attracts a large number of tourists from nearby states and abroad also. The main attraction of the festival is grand procession of the divine couple, which is known as Nagar Parikrama. Variants of fireworks are displayed. It is believed that this festival might have started since 300 years ago. With its rich history, colorful rituals and cultural significance, the festival holds a special place in the hearts of people of Sambalpur and continues to be an important event in the cultural calendar of Odisha. This year, week-long festival will conclude on tomorrow. Tapan Maharana, Parikrama, Kattak.
And now, Athar, let's go to Uttar Pradesh, from where we have our regional correspondent Satyadeep Gupta giving us some information from the Pilibhit district.
बिल्कुल ठीक कहा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पूरनपुर निवासी सत्यदीप गुप्ता ने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट और विश्व के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत दात्से की चढ़ाई एक सप्ताह में लगातार दो बार करके विश्व कीर्तिमान बनाया है, और उन्होंने ये उपलब्धि पिछले महीने हासिल की। ये दुर्गम यात्रा उन्होंने 6 दिन 7 घंटे में पूरी करके सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने इसका श्रेय अपने पिता राधा कृष्ण गुप्ता और माताजी मीना गुप्ता एडवोकेट को दिया।
सत्यदीप गुप्ता जी, आपने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट और विश्व के चौथे सबसे ऊंचे शिखर लियोसे पर सप्ताह में दो बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इस यात्रा के बारे में जानकारी दीजिए।
यात्रा काफी सुखद रही थी, बीच बीच में काफी रोमांचक भी रही थी और कभी कभी काफी कष्टदायी भी रही थी। कुल मिला के यात्रा काफी सुखद थी, और यात्रा हमारी शुरू हुई थी धौलागिरी से और उसके बाद हम लोग एवरेस्ट पे आए थे।
आपका विश्व रिकॉर्ड जो आपने बनाया है, वो किस बात का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, थोड़ा यहाँ भी बताएं।
ये विश्व रिकॉर्ड इसका है, जैसे एक ही सीजन में, जैसे मई जून, मई और अप्रैल ये सीजन रहता है एवरेस्ट क्लाइम करने का, इस एक सीजन में आज तक विश्व में किसी ने भी एवरेस्ट और लोत्से दोनों को दो बार फतेह नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ था इतिहास में। तो हम लोगों का ये प्लान था, एक साल से मैं इसकी तैयारी कर रहा था।
आप क्या समझते हैं पहाड़ों के बारे में, कैसा अनुभव होता है पहाड़ यात्रा में?
पहाड़ों से जाना आना मेरा हिमाचल से शुरू हुआ, वहां से मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और कठिनाई वाले पहाड़ चुने, उसके बाद मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, यहां से मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स किया था माउंटेनियरिंग सीखने का। वहां से सीखने के बाद धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ाया और मुकाम यहां तक पहुंचा है।
अपने पीलीभीत जनपद और उत्तर प्रदेश एवं भारत देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सभी युवाओं को मैं एक ही संदेश देता हूँ हमेशा, संभव सब कुछ है। अगर आप उसको सही परिश्रम और सही नियत से करेंगे तो असंभव कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ संभव है।
धन्यवाद सत्यदेव जी।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai, dekhna hai zor kitna baazu-e qatil mein hai.
In today's episode, we remember the legendary freedom fighter Ram Prasad Bismil, who was born on the 11th of June 1897 at Shahjahanpur, Uttar Pradesh. He is well known for being a part of the Mainpuri conspiracy in 1918 and the Kakori conspiracy in
1925.
Bismil was a patriotic poet and wrote in Hindi and Urdu using the pen names Ram, Agyat and Bismil. He immortalized the poems Sarfaroshi Ki Tamanna, Man Ki Leher and Swadeshi Rang as a war cry against the British Raj. Bhagat Singh praised him as a great poet-writer of Urdu and Hindi, who had also translated the books Catherine and Bolshevikon Ki Kartu. Friendship with fellow revolutionary Ashfaqullah Khan Varsi is legendary. The two, along with Roshan Singh, were executed on the 19th of December 1927 for their revolutionary activities. Ram Prasad Bismil's last message, which he wrote on the 16th of December 1927, was published in the magazine Kirti.
The time of execution is fixed for 6:30 a.m. on the 19th of December. Nothing to worry. I shall be reborn again and again due to God's grace. And my aim will be to ensure complete freedom for the world, that nature's gifts should be equally shared by all, and no one shall rule others. Everywhere, people should have their democratic institutions. My only request to countrymen is that if they had even an iota of sorrow at our deaths, then with whatever means, they must establish Hindu-Muslim unity. That was our last wish, and this only can be our memorial. Whatever I am saying, same is the opinion of Sri Ashfaqullah Khan Varsi. My request to the youth is that till many people get educated, don't pay attention to secret organizations. If they have the desire to serve the country, they should work openly. Just listening to empty rhetoric and imagining green pastures, they should not put their lives in trouble. We also remember independence activist Rudra Pratap Singh, who was arrested on the 11th of June 1941 for taking part in the individual satyagraha.
Rudra Pratap Singh was born in 1916 in district Narsinghpur, Madhya Pradesh. He was sentenced to 6 months imprisonment for taking part in the individual satyagraha under the Defence of India rules. He was imprisoned again for taking part in the Quit India movement and detained in Narsinghpur, Nagpur and Jabalpur jails between June 1943 and March 1945. He was released to avoid his custodial death, but soon after his release, he died of tortures and broken health.
We also remember Martyr Sikandar, who took part in the First War of Independence in 1857. Sikandar took part in the resistance against the company rule and also inspired others to join hands with the independence activists. He was caught while defending against the British attacks and charged with sedition and rebellion against the British. Sikandar was sentenced to imprisonment for 10 years with labor in iron. He died in the Andaman Islands on the 11th of June, 1859. We salute the great son of the soil.
And moving on to business news, India's equity benchmark indices closed mixed today. The Sensex slipped 34 points or 0.04% to close at 76,457. Nifty had a slim gain of 6 points or 0.02% to settle at 23,265. In the global crude market, Brent crude is trading at $81.47 per barrel. WTI crude is trading at $77.50 per barrel when reports last came in. And the global community exchange for 5th August 2024 contract, gold is trading at 71,325 rupees per 10 grams. Silver for 5th July 2024 contract is trading at 88,740 rupees per kg when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल.
जी, India will host the 2025 FIH Hockey Men's Junior World Cup. The decision was taken by Executive Board of the International Hockey Federation at Lausanne, Switzerland. The tournament will be played in December 2025. It will be the first time ever that the Junior World Cup will include as many as 24 teams. The last edition of the FIH Hockey Men's Junior World Cup took place in 2023 in Malaysia and was won by Germany.
आज दोहा में फीफा विश्व कप 2026 एएफसी क्वालिफायर के दूसरे दौर में भारतीय फुटबॉल टीम का मुकाबला मौजूदा एशियाई चैंपियन कतर से होगा. मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:15 बजे शुरू होगा.
And moving on to cricket, in the ICC Men's T20 World Cup cricket, South Africa defeated Bangladesh by 4 runs at the Nassau County International Cricket Stadium in New York, US last night. Opting to bat first, South Africa scored 113 for 6 in the stipulated 20 overs. Today, Pakistan will take on Canada at the Nassau County International Cricket Stadium in New York.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज है जन्मदिवस या है जन्मदिन या फिर जिन्होंने इस दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कहा.
वी आर टॉकिंग अबाउट जेम्स ह्यू कैलम लॉरी सीबीई, हु इज एन इंग्लिश एक्टर, कॉमेडियन, राइटर एंड म्यूजिशियन. ही फर्स्ट गेन्ड रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क एज वन हाफ ऑफ द इंग्लिश कॉमेडी डबल एक्ट फ्राई एंड लॉरी विद स्टीफन फ्राई, एंड टुडे अथर इज हिज बर्थडे. The two acted together in a number of projects during the 1980s and 1990s, including the BBC sketch comedy series A Bit of Fry and Laurie and the P.G. Woodhouse adaptation Jeeves and Wooster. From 1986 to 1989, he appeared in 3 series of the period comedy Blackadder, first as a recurring guest star in the last 2 episodes of Blackadder. From 2024 to 2012, Laurie starred as Dr. Gregory House in the Fox medical drama series House.
Just let them talk if they want to. Talk, don't bother me. I'm gonna keep on till the whole wide world knows that I really love you. I really love you so.
And outside acting, Laurie released the blues albums Let Them Talk, jiska gana humne abhi suna, and Dented Rain, both 2 favorable reviews.
और इस क्रम में अब हम याद करेंगे अपने समय के प्रसिद्ध तैराक मिहिर सेन को, जिनकी आज है पुण्यतिथि. वे भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे. उन्होंने 1966 में पनामा नहर के एक छोर से दूसरे छोर तक यानी 77 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की थी. मिहिर सेन 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी रहे. उन्हें 1959 में पद्मश्री और 1967 में पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया. और आज ही पुण्यतिथि है घनश्याम दास बिरला की. वे भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह बिरला समूह के संस्थापक रहे. वे स्वाधीनता सेनानी भी थे. वे गांधी जी के मित्र, सलाहकार, प्रशंसक और सहयोगी भी थे. भारत सरकार ने 1957 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया. और आज ही अगर हम बात करें तो भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी गिरीश चंद्र जोशी का जन्मदिन भी है. उनको भी बधाई हम देते हैं. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए अतहर सईद और रेणु कटारिया को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार.
नमस्कार.